नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हैं और बहुत ही गहन मुद्दा है कर्म का। भगवान ने एक जगह पर अर्जुन को कहा, गहनो कर्मणा गति, कि कर्म विकर्म अकर्म इनका जो नियम है और किस प्रकार से फलीभूत होते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही ये गहन विषय है। और श्रद्धा से और भक्ति से ही हम इसका साक्षात्कार कर पाएंगे। इसे तर्क से और बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, केवल इसका साक्षात्कार हो पाएगा। तो आज का श्लोक जो इसी श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर भगवान अब अर्जुन को इस कर्म के नियम में अग्रसर ले जाते हुए, योग में स्थित होते हुए, एक समता के भाव में कर्म कैसे किया जाए, इसे समझा रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो मानो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि यदि आप कर्म पर इतना जोर दे रहे हो तो फिर योग किसे कहते हैं और कर्म योग किसे कहते हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को धनंजय पुकार रहे हैं और कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि समत्वम, जब तक कि वो व्यक्ति के अंदर एक समता नहीं आती, इक्वैनिमिटी जिसको कहते हैं, तब तक वो केवल कर्म में लगा हुआ है, कर्म योग में नहीं लगा हुआ। इसलिए इस श्लोक की शुरुआत है योगस्थ कुरु कर्माणि, कि हे धनंजय, योग में स्थित रहकर कैसे तुम्हें कर्म करना है। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित, संग रहित वो कर्म होना चाहिए, जैसे कि पिछले श्लोक में जो प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि फल की इच्छा न करते हेतु और अपने कर्म को अधिकृत तरीके से करना। तो यहां पर वही संगम त्यक्त्वा, आसक्ति और उस संग को त्यागते हुए, सिद्धि और असिद्धि, सिद्ध्य सिद्ध्यो, समान रहना सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में समान रहना, इसे कहते हैं समान या समता का योग, या विशेष रूप से योग की परिभाषा भगवान इस प्रकार से दे रहे हैं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है, योग में स्थित होकर कर्म की प्रक्रिया जो भगवान आज बता रहे हैं क्या है, आसक्ति रहित कर्म, धनंजय इस नाम से भगवान ने अर्जुन को क्यों पुकारा इस श्लोक में, और अंततः सफलता और असफलता में समता। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान ने कर्म एवं कर्मफल का वास्तविक ज्ञान दिया, कि हम सब भगवान के अंश होने के नाते बिना कर्म किए नहीं रह सकते, आत्मा का स्वरूप है ये, क्रियाशील रहना, सच्चिदानंद जो हमारे आत्मा का स्वरूप है, जो कि भगवान का अंश है, ये क्रियाशील रहे बिना नहीं रह सकता। तो फिर उसके जो फल आते हैं उन कर्म करने के या प्रक्रिया करने के, वो फल को जब तक हम भगवान को अर्पित नहीं करते, तब तक इसी बंधन में, कर्म के बंधन में वो अंश घूमता फिरता रहता है। तो वास्तविक ज्ञान हमने पिछले श्लोक में ये सीखा, और आज के श्लोक में भगवान आगे उसी कर्म को कैसे योग में परिणित करो, और योग की व्याख्या हमने अक्सर सुनी होगी, आज भी हम योग की व्याख्या करेंगे, और कर्म और योग इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों के मिश्रण में भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि समता का योग, इक्वैनिमिटी, कि कैसे समभाव से बैलेंस्ड तरीके से कर्म और योग इन दोनों को अपने जीवन में अपनाना। तो हम यदि आज के हमारे प्रवचन को इस प्रश्न में डालें कि कर्मी से कर्म योगी कैसे बने, कर्मी का अर्थ क्या है, कौन कह सकता है कर्मी का अर्थ क्या है, जो केवल कर्म कर रहा है। एक पशु भी कर्म करता है, हमने कर्म की परिभाषा ली थी, शास्त्रों के अनुसार कर्म की परिभाषा क्या है, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टता इति कर्म, अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए जो चेष्टा एक जीव करता है उसे कहते हैं कर्म। वो एक जानवर एक पशु भी करता है लेकिन वो कर्म योगी नहीं कहलाता। तो यहां पर कर्म योगी भगवान बोल रहे हैं आज के श्लोक में, इसलिए योगस्थ पूर्व कर्माणि, योग और कर्माणि, ये दो बहुत प्रमुख शब्द हैं आज के श्लोक के। तो छठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हें योगी बनना चाहिए। तो तुरंत हमारे जहन में कौन सी बात आती है, आंखों के सामने योगी बनना चाहिए, मतलब रामदेव बाबा, श्वास अंदर बाहर, सूर्य नमस्कार, ये वो आसन, तुरंत हमारे ख्याल में वो योगी सामने आता है इस प्रकार से। क्या ऐसा योग मुझे करना है, या क्या मैं अपने ऑफिस में इंजन चालू कर सकता हूं मेरा, क्योंकि बहुत से लोग उसको इंजन बोलते हैं प्राणायाम को। मेरा एक मित्र था, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ये बहुत साल पहले की बात है, आजकल तो रामदेव बाबा इनकी कृपा से बहुत से लोग जानते हैं प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका क्या है, कपाल भाती क्या है। पहले आप यदि बोलो कपाल भाती भस्त्रिका, लोग देखते कौन सी भाषा ये बोल रहा है। तो मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, वो रेल यात्रा में था और उसने देखा ऊपर वाली बर्थ पर एक व्यक्ति ये कर रहा है कपाल भाती, जानते कपाल भाती, देखा होगा ना कपाल भाती, तो कपाल भाती प्राणायाम कर रहा था। और नीचे इसने उसको देखा, इससे समझ में नहीं आया कि अचानक कुछ गड़बड़ हो गया, क्या पेट खराब हो रहा है या क्या हो रहा है। तो वो मुझे बोलता है शायद इंजन यही चला रहा है। तो उसने ऊपर से उसने सुन लिया, बोला भाई साहब ये प्राणायाम है, बोला प्राणायाम है दुशासन है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो योग केवल वही नहीं है, हाँ वो एक अंग है योग का, और उसके द्वारा एक व्यक्ति भगवान के समाधस्थ अवस्था तक पहुंच सकता है, वो सहायक है। ये सब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंततः समाधि, इसे कहते हैं अष्टांग योग, अष्ट अंग जिसके हैं। तो जब भगवान अर्जुन को कहे योगी भव अर्जुन, अर्जुन योगी बनो, लेकिन हमने ये तो देखा नहीं कि अर्जुन तुरंत गांडीव छोड़कर कपाल भाति चालू किए, ऐसा तो नहीं। तो अर्जुन गांडीव उठाए और युद्ध करना प्रारंभ किया। तो फिर कोई अर्जुन से पूछे, भाई भगवान ने तो अभी अभी कहा है योगी बनो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा योग है गांडीव उठा के मारना, खून खराबा। तो इसलिए वो सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है, जो कि आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। तो हिंदी में अनुवाद इस पहली पंक्ति का क्या है, योग में स्थित होकर कर्म करो हे धनंजय, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर। तो फिर कोई कह सकता है ठीक है, मैं भी सुबह आधे घंटा योग करता हूं और फिर ऑफिस जाता हूं, तो क्या योगस्थ कुरु कर्माणि मेरा चल रहा है कि नहीं, योग किया मैंने सुबह सुबह और उसके बाद ऑफिस गया, फिर वापस दूसरे दिन योग, और इस प्रकार से भगवद गीता के अनुसार, आज के श्लोक के अनुसार, क्या मैं जीवन जी रहा हूं, क्या मैं कर्म योगी बन गया कि नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका अर्थ क्या है, अब योगस्थ कुरु कर्माणि, तो इसका यदि विभाजन करें तो संस्कृत में कुरु का अर्थ है करना, एक अर्थ कुरु का है करना। तो भगवान कह रहे हैं कर्माणि करो हे अर्जुन, हे धनंजय कुरु करो, कैसा कर्म करो, योगस्थ योग में स्थित होकर कर्म करो। तो हम यदि इसका विभाजन कर ये दो शब्द पर गौर करें, कौन से दो शब्द, योग और कर्म। तो योग का अर्थ हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो कि यज धातु से बना है, अर्थात भगवान से संयोग स्थापित करना। तो यदि प्राणायाम जितने सारे आसन हैं उससे भगवान से संबंध स्थापित हो रहा है तो हां योग सिद्ध हो रहा है, परंतु यदि कपाल भाति व्यक्ति केवल पेट कम करने के लिए कर रहा है, यदि जितने सारे आसन केवल अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए कर रहा है तो उसे योग नहीं कहेंगे, वो केवल एक एक्सरसाइज हो गया। वो तो आजकल बहुत से लोग करा देंगे बिना योग के भी, कोई वैसे ना, जैसे अपने श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि बंदर जो होता है एकदम फिट बॉडी होती है उसकी, और देखो उसके कार्यकलाप, उसके कार्यकलाप देखो, जैसे कि एक जंगल में योगी जीवन जीता है, फलाहार पे कोई घर भी नहीं बनाता, बस पेड़ों की छत्र छाया में। लेकिन प्रभुपाद कहा करते थे, बट इफ यू लुक इन टू द पर्सनल लाइफ ऑफ दैट मंकी, ही हैज 15 गर्लफ्रेंड्स। तो इसलिए संस्कृत में उसे कहते हैं मर्कट वैराग्य, कि हां बाहरी रूप से बहुत बड़ा वैरागी ये बंदर दिखता है लेकिन मर्कट वैराग्य। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण से संयोग स्थापित नहीं होता तब तक उसे योग नहीं कह सकते। अब कर्म, पिछले श्लोक में कर्म की परिभाषा दी गई थी, कर्म भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। कैसे, जब भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है अर्जुन, परंतु फल की इच्छा मत करो, मा फलेषु कदाचित, तो फल की इच्छा वही व्यक्ति कर सकता है जब वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने की चेतना में वो कर्म करता है। जब उसकी चेतना उस कर्म में स्वयं भोग करने की होती है तो वो सेवा नहीं हो सकती, और वो मा फलेषु कदाचन, उस वो जो वाक्य है उसको सिद्ध नहीं कर सकता। तो मा फलेषु कदाचन इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए उसे कर्म को को सेवा में परिणित करना होगा, क्योंकि कर्म तो बहुत उसे सेल्फिश बताया गया है, लेकिन सेवा जो है वो सेल्फलेस है ना। इसलिए अक्सर ये सेवा शब्द बहुत कम इस्तेमाल होता है आजकल। कोई ये नहीं कहता बॉस को जाके, मैं आपकी सेवा में हूं, आप जैसा मुझे यूज करना चाहें, कुछ दें या ना दें वो भी चलेगा। नहीं, सब टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से लिखे जाते हैं कि इतना टाइम मेरा ड्यूटी होगा, ओवर टाइम का इतना पैसा, और जितना मेरा टाइम ड्यूटी होगा उसका इतना पैसा, तो उसे सेवा नहीं बोल सकते। तो इसलिए पिछले श्लोक को लेते हुए यदि हम आज के श्लोक की पहली लाइन समझें, तो योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ है योग में स्थित होते हुए सेवा करो अर्जुन, फल की इच्छा न रखते हुए। अब एक और दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो योग और कर्म को समझते हुए योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ हुआ श्री कृष्ण की भावना में स्थित होकर श्री कृष्ण की सेवा। बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए वर्डिंग्स में, क्योंकि श्री कृष्ण की भावना में स्थित होकर और किसी की सेवा कर सकता है व्यक्ति, या और किसी की सेवा करते हुए श्री कृष्ण की भावना में व्यक्ति रह सकता है। लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम मेरी भावना में माम अनुस्मर युद्ध च, कि तुम युद्ध करो मेरे लिए और माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध कृष्ण की सेवा और स्मरण भगवान श्री कृष्ण का, इसे कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। फिर यदि हम इसे एक और दृष्टिकोण से समझें तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि योग की शुरुआत होती है यम नियम, अनुकूल और प्रतिकूल चीजों के साथ योगी कैसे व्यवहार करता है। अनुकूल्यस्य संकल्प, अनुकूल वस्तुओं को, अनुकूल स्थितियों को योगी स्वीकार करता है, प्रतिकूल स्थितियों को, वस्तुओं को वर्जनम, उससे वर्जित हो रहता है। तो यदि अब ये दो श्रेणी देखें तो एक श्रेणी है कि लोग हां भक्ति करते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हो, और एक है आध्यात्मवादी जो सब कुछ माया मानते हैं कि सब कुछ माया है, इसलिए उसका परित्याग कर देना। जो निर्विशेषवादी हैं वो सब कुछ माया मानते हैं, जो ज्ञानी हैं सब कुछ माया, नैति 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 न इति न इति न इति, ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं, सब माया है, तो उसे कहते हैं सबसे वर्जित रहना। परंतु यहां पर भगवान एक बैलेंस्ड तीसरा सिद्धांत बता रहे हैं, उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। इस सुंदर श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सके, जो कि साधारणतः व्यक्ति को माया में डालने वाली वस्तु हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में यदि वो इस्तेमाल कर ले, जैसे कि ये लैपटॉप, अब क्या इसका उपयोग कर रहे हैं हम आज, ये एप्पल कंपनी का, हमारे मिस्टर स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल कंपनी खोली, उन्होंने, उनको यदि पूछे आपने एप्पल के लैपटॉप्स क्यों मैन्युफैक्चर किए, तो वो ये तो नहीं बताएंगे भगवत गीता का सेमिनार दिलाने के लिए। तो सारी दुनिया लैपटॉप का इस्तेमाल अनगिनत तरीकों से कर रही है, तो यहां पर भगवत गीता में भी कोई श्लोक नहीं है जहां पर भगवान लिख रहे हैं कि लैपटॉप को मेरी सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है योगस्थ कुरु कर्माणि। तो हां, ये वस्तु जो किसी की चेतना को दूषित भी कर सकता है, लेकिन यही वस्तु का इस्तेमाल अब किया जा रहा है हमारी चेतना को विकसित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो इसे कहेंगे युक्त वैराग्य। और वैसे हम देखें, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में, श्रील प्रभुपाद को बहुत से व्यक्ति ये प्रश्न पूछा करते थे कि आप बहुत हाईटेक सन्यासी लगते हो, जेटेज स्वामी, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका एक आर्टिकल आया था, द जेट एज स्वामी। तो ये प्रसिद्ध घटना जब प्रभुपाद को पूछा गया, यू आर अ सन्यासी, यू आर अ स्वामी, हाउ कम यू आर ट्रैवलिंग इन जेट एयरप्लेन्स? प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज द कंडीशन लिविंग एंटिटीज आर गोइंग टू हेल एट जेट स्पीड, सो आई कांट अफोर्ड टू गो बिहाइंड देम ऑन अ बुलक कार्ट, टू कैच देम आई हैव टू बी फास्टर देन देम। तो हालांकि इसके बहुत से उदाहरण हम ले सकते हैं। तो यहां पर अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे हैं और जो युद्ध लड़ेंगे, अभी तो सुन रहे हैं भगवान से, तो अर्जुन जो युद्ध लड़ेंगे, अपने आप में कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है युद्ध लड़ना। वो कोई बताया नहीं गया कि युद्ध लड़कर आपको पुण्य इस प्रकार का आप कमाओगे, नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में धर्म की स्थापना हेतु जो युद्ध है, इसलिए उस युद्ध में भी अर्जुन अपने मुक्ति के द्वार खोल रहे हैं। हालांकि दिखाई क्या दे रहा है, हिंसा और खून खराबा इत्यादि, परंतु उसमें छिपा हुआ है क्या, योग, कर्म योग, योगस्थ कुरु कर्माणि। अब अगली लाइन, भगवान ने अर्जुन को कहा संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो भगवान ने अर्जुन को धनंजय क्यों पुकारा? धनंजय का अर्थ क्या है? धन समझते हैं ना, जिसने धन को जीता, जय, जिसने धन को जीता। तो यहां पर हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन ऐसे धनंजय जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जैसे धनवान व्यक्ति को जीत लिया था और अपना सारथी बनवा लिया। ऐसा नहीं अर्जुन ने भगवान को कहा कि बनो मेरा साथ, भगवान स्वेच्छा से अर्जुन से इतना प्रेम करते तो स्वेच्छा से भगवान अर्जुन के सारथी बने। तो जो सबसे बड़े धनवान भगवान श्री कृष्ण, उनको अपनी भक्ति के वश में अर्जुन ने कर लिया, इसलिए अर्जुन का ये नाम है धनंजय। तो यदि किसके पास सबसे मूल्यवान वस्तु आ जाए, बहुमूल्य वस्तु किसी के पास आ जाए, तब फिर उसे जो इस भौतिक संसार की नगण्य वस्तुएं हैं, क्या त्यागने में उसे कोई कठिनाई होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अर्जुन के पास साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, फिर तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि एक छोटा सा बालक पुत्र, वो अपने पिता की उंगली पकड़ते रास्ते पे चल रहा है, मार्केट जा रहा है, उसने पिताजी की एक उंगली पकड़ी हुई है। देखा दृश्य कभी आपने? देखा एक उंगली पकड़ी पिताजी की और रास्ते पे जा रहा है। वो है छोटा सा, लेकिन सामने कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा कुत्ता भौंके सामने, उसको कुछ डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि पिताजी बगल में है और उसने वो उंगली पकड़ रखी, तो बगल में कोई कुछ भी उसके साथ करे, लेकिन वो निडर होकर वहां पर उस रास्ते से गुजर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे जीवन में इतना निकट रहें, और केवल रहने से नहीं होता, वो छोटा सा बालक जैसे ही कुत्ता गुजरता है तो उंगली को और टाइट पकड़ता हो, और टाइट पकड़ता है उंगली। तो इसलिए एक दृष्टांत दिया गया है कि एक भक्त वो भगवान श्री कृष्ण से इसी दृष्टांत, इसी उदाहरण को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके सामने एक छोटा सा बालक के समान हूं हे भगवान, और आप कृपया मेरी उंगली पकड़िए। तो मतलब ये उल्टा हुआ ना, पिताजी बेटे की उंगली पकड़ रहे। तो भगवान ने पूछा, भाई बेटा जो है वो पिता की उंगली पकड़ता है ना, मुझे कोई डर नहीं किसी का। तो ये भक्त कहते हैं भगवान से कि हां, साधारणतः नॉर्म ये है कि बच्चा पिता की उंगली पकड़ेगा, लेकिन इस केस में आप मेरी उंगली पकड़िए, क्योंकि आपका जो पकड़ है वो कभी ढीली नहीं होगी। मेरी पकड़ ढीली हो सकती है क्योंकि मैं बद्ध जीव हूं, आपकी पकड़ कभी ढीली नहीं होगी। तो वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने रथ की जो लगाम है मेरे हाथ दी है, तो रथ की लगाम मेरे हाथ दी है, लेकिन तुम्हारा ये जो मनोरथ है, मनोरथ समझते हैं, ये जो मन रूपी रथ है उसकी लगाम अब तक तुमने नहीं दी, तुम अपने मन की मर्जी कर रहे हो, तो वो लगाम भी मेरे हाथों में दो। इसलिए हमारा ये जो शरीर रूपी रथ है इसको तो हम भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए हमें, परंतु जो मनोरथ है उसकी लगाम भी भगवान श्री कृष्ण के हाथ देनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा, ये जो तुम्हारे द्वंद्व हैं कि ये मरेंगे, कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसको राज्य मिलेगा, स्वर्ग नर्क इत्यादि, ये सारे जो तुम्हारे तर्क वितर्क द्वंद्व हैं, इससे ऊपर उठकर संगम त्यक्त्वा, मैं जो बोल रहा हूं वो फिलहाल तुम करो। तो प्रभुपाद कुछ उदाहरण दिए हैं इसके संदर्भ में। सबसे पहला उदाहरण दिया है बैंक कैशियर का, संगम त्यक्त्वा। अब देखिए, अक्सर हमने देखा है बैंक में कैशियर गिने जाता है, दिन भर क्या करता है, यही करता है। हाँ, बहुत गांधी जी का दर्शन बहुत होता है, दिन भर कैशियर, क्या गांधी जी के दर्शन करने के लिए उधर नौकरी कर रहा है, काउंट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, हजार लाखों कई बार करोड़ों के नोट काउंट करता है वो। प्रभुपाद ये उदाहरण दिए, लेकिन एक भी नोट उसने एक करोड़ काउंट किया होगा, लेकिन एक भी नोट अपने जेब में नहीं रख सकता है, और एक भी नोट अपने जेब से ऐड भी नहीं करेगा, कम भी हो गया तो, वो तो कभी नहीं करने वाला। एज इट इज उसे काउंट कर किसे देना है, बैंक को। तो ये उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, और बहुत ही रेलेवेंट उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण है संगम त्यक्त्वा, कि वो अपना कर्म कर रहा है लेकिन उसे जो उसका फल मिलने वाला है वो जो उधर कर रहा है उसमें नहीं मिलेगा। वो जितने प्रामाणिक तरीके से अपना कर्म करेगा उसके अनुसार उसे उसका फल मिलना ही है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे कोई 100 रुपया डिपॉजिट करे या 1 करोड़ करे, उसकी सैलरी फिक्स्ड है। वो बॉस ये नहीं बोल सकता बैंक मैनेजर, आज तो किसी ने डिपॉजिट ही नहीं किया, चलो आज एक दिन का तुम्हारा खाड़ा हम करेंगे, नहीं। तो ये एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया संगम त्यक्त्वा, कि आसक्ति रहित, और उसे पता है, उसे चाहे 1 करोड़ रुपया भी सामने हो उसे कोई हर्ष उल्लास नहीं होता है, उसे मालूम है मेरा है ही नहीं, 1 नोट इसमें से मेरा नहीं है ना। आपको कितना हर्ष उल्लास हो रहा है देख के अभी कितने सारे दिख रहे हैं 500 के नोट, वही लेकिन मेरे जेब में हो मेरे हो तो फिर कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो बैंक कैशियर को उसमें कोई आसक्ति नहीं और कोई विरक्ति भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई 1 करोड़ रुपया लाके डिपॉजिट किया है तो बोले ये तो मेरा तो है नहीं, तो तुम ही काउंट कर लो यार और देख लो, तो चाबी है रख लो अंदर। नहीं, उसको अपनी ड्यूटी करनी है, उसमें विरक्ति भी नहीं दिखा सकता और आसक्ति भी नहीं दिखा सकता। संगम त्यक्त्वा। दूसरा उदाहरण, हरे कृष्ण, हमारे वेटर साहब, प्लेट खाली है अभी। क्यों खाली है? क्योंकि ऑर्डर मिला नहीं है। तो कोई अगर ऑर्डर करता है होटल में जाकर कि मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, तो अभी इसको कोई आसक्ति नहीं है कि वो क्या ऑर्डर करता है क्या नहीं ऑर्डर करता है। उसका काम क्या है? जो ऑर्डर किया है वो जाकर अंदर से उसके लिए लेकर आए, एज इट इज लेके आने का। वो ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं अच्छी लगती बिरयानी। कस्टमर बोल रहा लेकिन मेरे को बिरयानी, मेरे को नहीं अच्छी लगती ना, मेरे को जो अच्छा लगता वो खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी वही उदाहरण है कि किस प्रकार से उसको सिखाया जाता है कि संगम त्यक्ता, उस विरक्ति और आसक्ति से ऊपर उठते हुए तुम अपना कार्य करो। अच्छा, ये एक बहुत ही विशेष उदाहरण है, आपको समझाएंगे एक ड्रामा का। ये ड्रामा का उदाहरण ये है कि दो लोग अभिनय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको सीन बताते हैं ड्रामा का। सीन ये है कि हीरो जो है वो विलन को मार रहा है, एकदम ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं जिसको, मार रहा है, पीट रहा है, हाँ होता है डिशुम डिशुम मार मार के उसका भड़ता बना दिया। तो अब डायरेक्टर ने बोला है, हाँ सीन चालू होगा, पर्दा खोलेगा, हीरो इतने घूंसे मारने विलन को, हाँ गिन के 15 घूंसे मारने, विलन गिन के 15 घूंसे खाने, तो इधर गिरना है उधर गिरना है, हाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं चला, मार खाने खाली। विलन को क्या आदेश दिया डायरेक्टर ने? खाली मार खाने का। हीरो को आदेश दिया मारते रहो मारते रहो। तो सीन चालू हुआ, हीरो एकदम खुश हंस रहा है, चला पहले से मेरा बकाया बाकी था, लास्ट टाइम इतना मारा था तूने मेरे को, अभी सब बदला निकालूंगा। तो मार रहा है जोर जोर से मार रहा है। एक बार हमारे एक बॉम्बे के ड्रामा में ऐसे ही हो गया नाम नहीं बताएंगे, वो दोनों के बीच में कुछ था, पहले से अनबन थी और कोइंसिडेंटली वो आ गए इसी स्थिति में, तो वो सच में मारना शुरू कर दिया। अब एक्चुअल प्ले चल रहा है, सामने 1000 लोग बैठे हैं और वो सब लोग भी देख रहे हैं, सच में मार रहा है वो सब, वो पूरा जो उसका प्लॉट था भूल गए और वो देख रहे हैं इतनी जोर जोर से इसको मार रहा है, और वो भी अभी कर्टन बंद कैसे सबको लेके ला, सीन बहुत रियल लग रहा है एकदम, वो बेचारा मार खाए जा रहा है खाए जा। लेकिन जैसे ही पर्दा बंद हुआ फिर पासे पलटे पीछे ग्रीन रूम में। तो यहां पर पर्दा खुला और ये हीरो मारना शुरू किया, तो हीरो मारना शुरू किया, उसको बताया गया था 15 घूंसे मारने, तो हीरो को इतना अच्छा लग रहा है मारना कि वो मारे जा रहा है, मारे जा 15 के ऊपर जा रहा है अभी। तो डायरेक्टर बोला बस कर्टन बंद हो ना, अरे अच्छा लग रहा है थोड़ा खोल के रखो ना, अच्छा लग रहा है मारने। और विलन उल्टा 10 घूंसे के बाद डायरेक्टर बोल रहा बंद करो भाई, मेरी हालत खस्ता हो रही है यहां पे। तो डायरेक्टर बोला नहीं, जब तक पूरे 15 नहीं खाएगा तब तक कर्टन बंद नहीं होगा। तो यहां पर यह उदाहरण दिया गया है कि एक जो पर्दा बंद होना नहीं चाहता क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, अभी क्या अच्छा लग रहा है, मारना अच्छा लग रहा है, और दूसरा है जो मार खा रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि पर्दा जल्दी बंद करो जल्दी। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कई बार प्रकृति हमें घूसा मरवाती है और कई बार घूसा दूसरे को मारने के लिए बोलती है। दोनों में हमको बिल्कुल भी आसक्ति या विरक्ति नहीं दिखानी, वो डायरेक्टर है। सफलता असफलता, सिद्ध असिद्धियों, जो भगवान आज के श्लोक में बोलेंगे कि डायरेक्टर है वो भगवान और प्रकृति, और वो हमें अपॉइंट किए हैं, जो हमारा रोल है वो हमें करना है। उसमें हम हमारे डिमांड्स नहीं रख सकते कि पर्दा ज्यादा खुला होना चाहिए। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मन भी एकदम खुश रहता है मेरा, परिवार में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, पड़ोसी भी अच्छे मिल गए, ससुराल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो पर्दा थोड़ा ज्यादा खुला रखो। नहीं, कई बार प्रकृति के नियम ऐसे होते हैं जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है अचानक पर्दा बंद, और कई बार जब बहुत घूसे पड़ रहे हैं तो पर्दा बंद ही नहीं हो रहा है। हम यहां वहां देख रहे हैं, कौन पर्दा का कंट्रोल कौन कर रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है। जब बहुत तकलीफें आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो 12 साल, एक निमिष काल 12 साल तक चल रहा है या युगों तक चल रहा है, ऐसे लग रहा है। गोविंद विरहीण में हम गाते हैं उस प्रकार से। तो ये उदाहरण दिया गया है कि संगम त्यक्त्वा भगवान बोल रहे हैं कि हे धनंजय, तुम उस आसक्ति में मत पड़ना, क्योंकि यदि तुम उसके अंदर पड़ गए तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वो असहाय बन जाता है। तो अब हम समुद्र मंथन, श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की जो लीला है केवल उससे एक श्लोक लेंगे। प्रसंग है देव और असुर, ये लगे हुए हैं मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं। क्यों मंथन कर रहे हैं? अमृत उत्पादने, अमृत चाहिए उनको, अमृत चाहिए इसलिए मंथन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में ये पूरा जो प्रसंग सुनाने के पश्चात, अब हुआ क्या था आप जानते हैं ना, जब अमृत आया, मोहिनी मूर्ति, अमृत लेकर मोहिनी मूर्ति आई, तो अमृत अंततः मिला किसे? देवताओं को मिला। हालांकि जतन उतना ही असुरों ने ज्यादा किया था, क्योंकि असुर वो वसुकी जो सर्प था, वो वसुकी सर्प के मुख की ओर थे, उनकी मूर्खता थी, उन्होंने वो ऑप्शन चूज किया था, तो मुख की ओर और सारा जो वसुकी सर्प का विष उनके अंदर, पूरे जो गर्माहट थी उनको लग रही थी। तो यहां पर देव और असुर ये दोनों जतन एक प्रकार एक समान कर रहे थे, परंतु फले विकल्पा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर श्लोक है। इस पूरे समुद्र मंथन प्रसंग के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं सुरा सुरगण समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंज सापुर यत पाद पंकज रज श्रेण न दैत्य। तो इस श्लोक में 6 समानताएं सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 6 समानताएं देखी जा रही थी देव और असुर में अमृत उत्पादन हेतु। 6 समानताएं थी, और वो 6 समानताएं कौन सी थी? वो कहते हैं सम देश काल हेतु अर्थात माध्यम अर्थ कर्म मति। दी 6 factors were common between the demigods and the demons. कैसे? दोनों जो मंथन कर रहे थे देश एक ही था, क्या था? क्षीर सागर। ऐसा नहीं था कि देव जो हैं वो और कहीं पर मंथन कर रहे थे इसलिए उन्हें अमृत मिला, और असुर और कहीं पर मंथन कर रहे थे इसलिए उन्हें नहीं मिला। नहीं, द प्लेस वॉज सेम। काल ऐसा नहीं कि कोई अच्छे मुहूर्त में देवता मंथन कर रहे थे और असुर जो है गलत मुहूर्त में मंथन, नहीं, काल भी एक ही था, एक ही साथ दोनों एक ही काल में एक ही मुहूर्त में एक ही नक्षत्र में मंथन कर रहे थे। तो काल भी एक माध्यम, मंदराचल पर्वत को माध्यम बनाया था, कॉमन था दोनों के लिए मंदराचल पर्वत, ऐसा नहीं देवताओं के लिए कुछ वो फेवर कर रहा था असुरों के लिए, नहीं, सेम माध्यम वही था। अर्थ, उसके अंदर जो जड़ी बूटी डाल रहे थे वो लोग, वो सब जड़ी बूटियां भी समान थी क्वांटिटी क्वालिटी वाइज, अर्थ भी कॉमन था। कर्म, दोनों कौन से कर्म में लगे हुए थे? मंथन करने के कर्म में, यहां से असुर यहां से देवता, दोनों मंथन करने के कर्म में। और मति दोनों की एक ही थी, क्या? अमृत चाहिए, दोनों पार्टियों की मति एक ही थी, अमृत। तो ये छह समानताएं बताई गई है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं सुरा असुर गणा सम देश काल हेतु अर्थ कर्म मति, सम समान थे ये छह चीजें, फले विकल्पा, फिर फल इतना विकल्प क्यों हुआ? तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्रा अमृतम फलम अंज सापुर यत पाद पंकज रज श्रेण न दैत्य न दैत्य। दैत्यों ने क्या नहीं किया था? उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण नहीं की थी, बाकी सब एज इट इज कॉमन था। और देवताओं ने भगवान श्री विष्णु के चरण रज की शरण ग्रहण की थी, इसीलिए अमृत उन्हें मिला। तो यहां पर समझ में आ रहा है, एक कर्मी और कर्मयोगी बन गया, सब कुछ समान, लेकिन सरेंडर किसको किया था, किसने, उसके ऊपर डिपेंड किया कि फल क्या मिला। तो भगवान इसलिए अर्जुन को कहे तीसरी लाइन में, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में अर्जुन तुम समान रहो, क्योंकि ये सफलता असफलता भौतिक स्तर पर है, और सफलता असफलता ये दोनों एक दृष्टिकोण से ये डिसाइड नहीं करते कि अंततः किसकी सफलता होगी। जैसे कि शतरंज का खेल जानते हैं, चेस, चेस में आप देखो बहुत बार आप वॉलंटरली कुछ सैक्रिफाइस करते हो, आप अपना हाथी मरवा दिए, जानते हैं चेस, जानते हैं थोड़ा, हाथी मरवा दिया आप, तो किसी को लगेगा जो जानता नहीं हो शतरंज के खेल को, उसको लगेगा तो मूर्ख आदमी जानबूझ के जानते बूझते अपने हाथी को मरवा दिया या घोड़े को मरवा दिया ऊंट को मरवा दिया जिसको, लेकिन उसके पीछे वो और आगे की चार चाल सोच रहा है, ये मेरे को यहां मारेगा मैं उसके राजा को उधर से पीछे से उड़ा दूंगा। तो उसमें सफलता असफलता आपको बाहरी दृष्टिकोण से उसकी गणना आप नहीं कर सकते, इसलिए भगवान यहां पर बता रहे हैं तुम ये मत समझना कि दुर्योधन यदि युद्ध जीत भी लिया तो जीता हुआ माना जाएगा, और यदि तुम ये युद्ध हार भी गए तो तुम हारे हुए माने जाएंगे, नहीं। इसलिए एक सुंदर उदाहरण से हम इसको समझाएंगे, ये दो उदाहरण है रामायण से, परफेक्ट उदाहरण है सफलता असफलता के लिए, जटायु और मारीच। तो अब जटायु और मारीच में देखें तो जटायु मारा गया रावण के हाथों और मारीच प्रभु श्री राम के हाथों मारीच मारा गया। तो अब दोनों में, दोनों अपने अपने मिशन में निकले थे। मारीच मिशन में निकला था ये न के न प्रकारेण राम को सीता से अलग करना है, उसका मिशन क्या था? राम को सीता से अलग करना है। जटायु इनका मिशन क्या था? राम को सीता से मिलाना है। कौन सफल रहा कौन असफल रहा दोनों में? मारीच सफल रहा ना, एक एक लेवल पे यदि हम देखें, बाहरी लेवल पे देखें, तो मारीच सफल रहा, मरते मरते उसने प्रभु श्री राम की आवाज में हे सीते हे लक्ष्मण पुकारा, और प्रभु श्री राम के हाथ, साक्षात भगवान के हाथ मारीच मारा गया, और मरते समय उसके मुंह पर लक्ष्मण सीते इनका नाम था। तो मारीच बाहरी दृष्टिकोण से सफल रहा और जटायु बाहरी दृष्टिकोण से रावण के हाथ मारे गए और फेलियर। जटायु एक्सटर्नली वॉज अ फेलियर, मारीच एक्सटर्नली वॉज अ सक्सेस स्टोरी, लेकिन प्रभु श्री राम के दृष्टिकोण में पूरा उल्टा। राम के दृष्टिकोण में मारीच वो एक असफल व्यक्ति रहा और जटायु सफल रहे, क्योंकि जटायु के अंतिम संस्कार साक्षात भगवान श्री राम ने किया। तो वैकुंठ प्राप्त जटायु को हुआ, न कि मारीच को। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि सफलता और असफलता की परिभाषा क्या है। तो मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर एक सुंदर श्लोक में एक कर्मी और कर्मयोगी में भेद बताते हैं। वो कहते हैं, नाथेना पुरुषोत्तमेत्रि जगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कटिपय ग्रामेशम अल्पार्थदम सेवाये मृगया महे नरमहो मूढ़ो वराकावयम। इस सुंदर श्लोक में कहते हैं कि एक तरफ है एक कर्मी और एक तरफ है एक कर्म योगी या भक्त। तो वो डिफरेंस बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कहते हैं नाथे न पुरुषोत्तमे, कि एक जो कर्म योगी एक जो भक्त है उनके बॉस कौन है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बॉस कौन है? पुरुषों में जो उत्तम है भगवान श्री कृष्ण। और एक जो अभक्त है, केवल जो कर्म में लगा हुआ है, यम कंचित पुरुष अधम, उसके बॉस हैं एक भौतिक संसार का पुरुष अधम। तो ये सबसे पहला डिफरेंस, बॉस में डिफरेंस बता दिया कि दोनों लगे हुए हैं किसी की सेवा करने के लिए। एक सेवा में लगा है पुरुषोत्तम की, एक सेवा में लगा हुआ है पुरुष अधम की। इसलिए देखो, अक्सर लोग ये भी देखते हैं ना आजकल कि ठीक है, तुम इंजीनियर हो, जो भी हो, डॉक्टर भी हो, तुम कौन से फर्म से कनेक्टेड हो, तुम्हारा बॉस कौन है? जैसे अक्सर मैं यही उदाहरण मुझे याद आता है, अमिताभ बच्चन का हेयर ड्रेसर, वो आया था एक प्रोग्राम में बैंड्रा में। अमिताभ बच्चन हेयर स्टाइलिस्ट है, एकदम आलीशान गाड़ी में उसका एकदम चकाचक विजिटिंग कार्ड निकाल रहा है और इंट्रोड्यूस किया, अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइलिस्ट। देसी भाषा में है क्या? नहीं है, हजाम। लेकिन किसका हजाम है? हमारा तुम्हारा नहीं। कल को आप जो बाल कटवाने जाते हैं तो उसको बोलो कि थोड़ा कार्ड बनाओ, मेरा हेयर स्टाइलिस्ट करके बनाओ, तो थोड़ा कार्ड। तो यहां पर क्रेडिबिलिटी उसको कहां से मिल रही है? कौन है उसका बॉस? किसका हेयर स्टाइल कर रहे हो? तो यहां पर महाराज कुलशेखर मुकुंदमाला सूत्र में कहते हैं कि एक जो भक्त है उसको पूछो, भाई आपका बॉस कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण। तो ये पहला डिफरेंस, बॉस में डिफरेंस। फिर आगे वो कहते हैं कि वो जो बॉस की सेवा में लगा हुआ है, तो जो कर्मी है वो कठोर परिश्रम कर कर दिन रात खून पसीना बहाकर फिर जाकर वो बॉस बोलता है ठीक है अभी बोनस इंक्रीमेंट प्रमोशन ये वो। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम बॉस हैं, इनकी सेवा ये भक्त स्मरण। हम अक्सर ये कहें कि कोई अगर अपने बॉस को फोन करके बोलता है बॉस मैं आज आपका स्मरण कर रहा हूं, आपकी लीलाओं का स्मरण कर रहा हूं, आप कैसे ऑफिस में आते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे सोते हैं, मैं आज उसका स्मरण कर रहा हूं। तो बॉस भी बोलेगा ठीक है मैं भी पगार देने के लिए स्मरण करूंगा तुम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां नासिक में गोदावरी के तट पर, वो ब्राह्मण भक्ति रसामृत सिंधु में इसका उदाहरण है कि गोदावरी के तट का वो ब्राह्मण, उसने अपने स्मरण में भगवान श्री विष्णु को स्वीट राइस बना के खिलाया और खुश भी कर दिया और भगवत धाम भी पहुंच गया। वो स्मरण में सब कुछ चल रहा है कि उत्कृष्ट क्वालिटी का दूध और चावल और इतने सारे अलग अलग वो ड्राई फ्रूट्स डाल डाल के स्वीट राइस भगवान को खिलाया, सब कुछ स्मरण में। और भगवान ने उस स्मरण में उसने जो ऑफर किया उसे स्वीकार किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि केवल हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी छाछ पिया करते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत पे इतने प्रवचन दिया करते थे, अचानक पेट खराब हुआ उनका, तो वहां पर वैद्य को बुलाया गया, तो वैद्य ने कहा इन्होंने तो कुछ बहुत हैवी दूध का आइटम खाया। तो सारे जो उधर आते थे वो लोग वो वैद्य को मारने लगे, बोले दूध का आइटम हैवी, ये तो खाली इतना सा छाछ पीते। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये एडमिट किया, कन्फेस किया कि उनके स्मरण में श्रीमती राधा रानी ने उनको गोलोक वृंदावन का स्वीट राइस खिलाया था। देखो तो हम तो यहां पर ही बाल्टी अंदर कर जाते, कुछ होता नहीं हमको, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इनका वो सेंसिटिविटी देखिए भक्ति की लेवल। तो पॉइंट ये यहां पर कि भक्ति में जो कोई लगता है या जब कर्मयोग में कोई लगता है तो उस पुरुषोत्तम बॉस को प्रसन्न करने के लिए उसे कोई कठोर परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या केवल स्मरण मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो आप ऑफिस में जाओ हाथ ऊपर करके बॉस का ऐसा कीर्तन करो, देखो कितना प्रसन्न होता है क्या वो। तो आगे फिर वो कहते हैं ठीक है, कोई पूछे कि आपके पुरुषोत्तम की आप स्मरण से सेवा करते हैं लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, मुझे तो देखो मेरा बॉस बंगला दिया, गाड़ी दिया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन भी मिलेगा, क्या क्या नहीं, तुम्हारे ये बॉस क्या देते हैं। तो यहां पर महाराज कुलशेखर कहते हैं यम कंचित कि इस भौतिक संसार में ये जो भौतिक संसार का बॉस पुरुष अधम जो है ग्रामेश अल्प अर्थ कुछ देगा, ज्यादा से ज्यादा यदि देगा तो, लेकिन जो पुरुषोत्तम है वो अपना वैकुंठ धाम की चाबी दे देते, अपने बंगले की चाबी लो मेरे घर पे रहो, मेरे स्वधाम में आके रहो। कौन बॉस है इस संसार का जो अपने बंगले की चाबी देगा एम्प्लॉय को कि तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद तुम मेरे घर में आके रहो। है कोई बॉस जो कंपनी मकान देती है वो भी निकाल लेती है कि रिटायरमेंट हुआ है चलो अभी वापस हैंड ओवर दी अपार्टमेंट बैक टू दी बॉस। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं महाराज कुलशेखर कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने स्वधाम शेयर करते हैं अपने भक्त के साथ। तो इसलिए ये अगर हम मटेरियल कैलकुलेशन भी करें तो प्रॉफिट कहां है ज्यादा। कोई यदि वो मटेरियल गणना में कैलकुलेट कर रहा है कि कहां फायदा नुकसान, तो यहां पे फायदा किधर है ज्यादा। देखो बॉस है पुरुषोत्तम, सेवा करने खाली इस प्रकार से, इतनी सरल सेवा और रिजल्ट देखो होता है क्या। प्रॉफिट लोग कैसे देखते हैं कि कितना आपका इनपुट है, आउटपुट कितना मिल रहा है। तो इनपुट कितना और आउटपुट कितना, देखो जन्म मृत्यु से मुक्ति हमें समझ में नहीं आएगा वो भाषा, हमें लग रहा होगा है ऐसे घुमाते हैं प्रभु जी तो। लेकिन जब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे तब उसका साक्षात्कार। इसलिए भगवान ने कहा कर्मणो गहना गति, वो केवल हमारे तर्क वितर्क और बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि भक्ति से उसका साक्षात्कार न हो। इसलिए एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कर्मी और कर्म योगी में अंतर क्या है। कैसेट आजकल तो लोग नहीं इस्तेमाल करते इतना, इसलिए फोटो दिखाया आपको। तो इसका जो ब्राउन टेप होता है वो चक्के के ऊपर दो उसके स्पूल्स होते हैं चक्के, जब आप उसके अंदर डालते हो टेप रिकॉर्डर में और प्ले बटन दबाते हैं तो दोनों चक्के एक दिशा में घूमते हैं, और दोनों एक दिशा में घूमते हैं लेकिन जो ब्राउन टेप है उसमें क्या देखा जाता है कि एक चक्के के ऊपर ब्राउन टेप बनता जाता है, दूसरे के ऊपर कम होता जा रहा है ना। तो वैसे ही दो व्यक्ति हैं एक ही बॉस के अंडर, मान लो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट में एक ही टाइम पे जाते हैं कि बस पकड़ते हैं, तो दोनों चक्के की दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन एक की चेतना क्या है कि मैं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं, लेकिन एक जो दूसरा है वो स्वयं के लिए सब भोग रहा है। तो उसका जो चक्का घूम रहा है उसके ऊपर उसके कर्म के बंधन उसे फांस रहे हैं, और जो दूसरा है वही कर्म कर रहा है इस भौतिक संसार में रहते हुए, लेकिन कर्म के बंधन वो ब्राउन टेप जो है वो खुलती जा रही है। तो उदाहरण है कि स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुमान मनो भी, हमने ये सुना था कि रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु जब मिले तो रामानंद राय ने ये श्लोक दशम स्कंद से राम भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव, और स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभेद, कि अपने स्थान में स्थित रहते हुए अपने मन और अपने वाक्यों को और अपने कार्यों को जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई लगाता है तो वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मना भजते श्रद्धावान, श्रद्धा से जो भजन करता है वो सबसे बड़ा योगी, जो भगवान ने छठे अध्याय में अर्जुन को बताया। तो इन सब से अंततः आज के श्लोक का निष्कर्ष क्या है कि कर्म जब तक कि योग में स्थित नहीं होता वो कर्म योग नहीं बन सकता। योग का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से संयोग। और ये जो श्लोक पिछली बार भी हमने लिया था गीता महात्म्य का कि कर्म का अर्थ है श्री कृष्ण की सेवा ही, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म का अर्थ है देवस्य सेवा, और वो देव कौन है यहां पर, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अर्थात आज के श्लोक का निष्कर्ष ये है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, ये है योग उच्चते, भगवान कह रहे हैं। इसे कहते हैं वास्तविक योग, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा हेतु, उनको संतुष्ट करने हेतु, उनके आदेश के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करें वो है कर्म योग। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? अनाउंसमेंट्स?
हरे कृष्ण। आज का प्रसादन स्पॉन्सर